करके जिसको। ओके, अगर हम कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, हम रोज खाते रहेंगे तो क्या होगा, तो हमें धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। हम इस संसार को करोड़ों जन्मों से देख रहे हैं इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। हमने कृष्ण के बारे में कभी सुना नहीं, भगवान के बारे में कभी पूछा नहीं किसी से, इसलिए भगवान अच्छे नहीं लग रहे। हम जानते हैं कि कृष्णा भगवान है, श्रद्धा है, मगर वो श्रद्धा कोमल है, वो श्रद्धा आसक्ति में परिवर्तित नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुई आसक्ति में। इसलिए कृष्ण यहां पे कह रहे हैं मई एवं मना मई एवं मना आधत स्व, अर्जुन अपने मन को मुझ में लगाओ, आसक्ति उत्पन्न करो मुझसे। जहां आसक्ति होती है वहां मन अपने आप जाता है, नहीं हमारी घर में आसक्ति है इसलिए मन अपने आप घर में जा रहा है, पैसे में आसक्ति है मन पैसे में जा रहा है, अपने आप में आसक्ति है इसलिए मन अपने में जा रहा है। सो हमें कुछ नहीं करना, हमें आसक्ति खत्म नहीं करनी, हमें आसक्ति संसार से मोड़ के भगवान में कर देनी है। और मई बुद्धिम निवेश है, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। सो केवल आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारी आसक्ति भगवान में है, आई लव कृष्णा, मेरे में बहुत भाव है कृष्ण के लिए, मगर मैं भगवान के लिए कुछ करता नहीं। ये भाव झूठा भाव है। अगर कोई वाइफ है और अपने हस्बैंड को कहे, हरे कृष्ण, वाइफ अगर अपने हस्बैंड को कहे कि आई लव यू मगर मैं आपके लिए कुछ करूंगी नहीं, खाना बड़ा खुद बना लो, तो वो कोई प्रेम है? उसको प्रेम नहीं कहते, उसको आसक्ति नहीं कहते। आसक्ति का लक्षण है सेवा, आसक्ति का लक्षण है क्रिया, आसक्ति का लक्षण है कि जिस भक्त में भगवान के लिए आसक्ति होगी वो अपने माइंड से बुद्धि से प्लानिंग करेगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मई बुद्धिम निवेश है, अर्जुन अपना मन और अपनी बुद्धि दोनों मुझ में लगाओ, बुद्धि को बंद मत कर दो। साधारणता लोग सोचते हैं कि भक्ति मतलब केवल भावना, कहते हैं लोग भाव, मगर भाव बिना क्रिया के भावुकता है, केवल भावुकता, ठोस भाव नहीं है। जैसे हमारे जो भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये लोग, इनके लिए भारत के लिए बहुत भावना थी नहीं, स्वतंत्र सैनी थे ये, तो ये बस लेक्चर देते रहे, ये लड़ाई भी की देश के लिए, कुछ किया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, मुझ में अपना मन आसक्त करो और मेरे लिए कुछ करो। भगवान के लिए कुछ करना जरूरी है, अगर हम भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं तो फिर आइंस्टाइन ने बोला है कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट, धर्म या भक्ति बिना क्रिया के, बिना सिद्धांत के, बिना बुद्धि लगाए एक भावना है केवल। समय बुद्धि में निवेश है, अपनी बुद्धि मुझ में निवेशित करो। इसलिए डिवोटी क्या करते हैं, भक्त क्या करते हैं, भक्त प्लानिंग करते हैं। जैसे ऑर्डिनरी आदमी प्लानिंग नहीं करते अपने जीवन के लिए कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा, फिर आगे ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे भक्त भी करता है। भक्त भी प्लानिंग करेगा, वो मैं कृष्ण के लिए अब प्रचार करूंगा, किसी को बताऊंगा उनके बारे में, उनकी किताबें दूसरों को दूंगा, उनका नाम लूंगा रोज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से उसका मन हमेशा, मन और बुद्धि भगवान में बिजी रहती है, एंगेज्ड रहती है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अपने मन और बुद्धि को किसी तरह भगवान में लगा के रखना है। डिवोटी प्लानिंग करेगा, ठीक है आज हम जो किचन में बनाएंगे वो भगवान के लिए बनाएंगे, नहीं इस तरह से प्लानिंग होती है, भगवान को क्या अच्छा लगता है खाने में वो आज बनाएंगे भगवान के लिए, और भगवान के लिए बना के भगवान को भोग लगाते हैं। तो उसके लाइफ में, उसके जीवन में भगवान आ जाते हैं। अभी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हम खुद हैं, अहम कर्ता अहम भोगी, हम अपने लिए कर रहे हैं, मगर कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे लिए करना शुरू करो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे डू द नीडफुल, जो भी जरूरी है वो करना शुरू करो। कृष्ण यहां पे ये समझा रहे हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड, सुने, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। या तो दिमाग, या तो आपका मन संसार में लगा गया या भगवान में लगेगा, दो ही चीजें हो सकती हैं बस। बस खाली नहीं रह सकता, खाली करने की कोशिश करोगे तो शैतान का दिमाग हो जाएगा। सो कृष्णा कह रहे हैं जो इस तरह से 24 घंटे मेरे बारे में सोचता है, मेरी सेवा के बारे में सोचता है, भगवान से बड़े भगवान की सेवा है। क्योंकि अगर भगवान हमारे सामने भी आ जाए आज और मैं भगवान की कुछ सेवा नहीं करूंगा तो हमारे लिए भगवान होना ननो एक ही बात है। नहीं, दुर्योधन के सामने कृष्ण थे, कंस के सामने कृष्ण थे, रावण के सामने साक्षात राम थे, हिरण्याक्ष के सामने साक्षात वराहदेव थे, हिरण्यकशिपु के सामने नरसिंह देव थे, मगर वो कुछ कर पाए भगवान का? उन्होंने भी भगवान को देखा मगर उनका देखना निष्फल हो गया। नहीं, उनको भी दर्शन हुए भगवान के। इसलिए भगवान को देखना अपने में सब कुछ नहीं होता। हम कह सकते हैं कि अरे भगवान को मैं देखना चाहता हूं। क्यों देखना चाहते हो? क्वेश्चन ये। सो जरूरी नहीं है कि आप भगवान को देखोगे तो आप भक्त हो। नहीं, भगवान ने तो अपने आप को असुरों को भी दिखा दिया, प्रकट हुए असुरों के सामने, रावण के सामने प्रकट हो गए। तो जीवन का लक्ष्य दर्शन करना नहीं है भगवान का, जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। और इस तरह सेवा करना है कि भगवान हमें देखने आ जाएं, भगवान भी सोचें कि कौन मेरा भक्त है जो इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है, चलो चल के उसको देख के आते हैं। इसलिए भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा और भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि भगवान आपको देखने आए। अगर मैं आप पे प्रवचन दे रहा हूं और मैं आपकी तरफ नहीं देखूं तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। नहीं, सो आप कहोगे यार मेरी तरफ देखा ही नहीं, और आप मुझे देख रहे हो 24 घंटा। उसी प्रकार अगर हम भगवान को देख रहे हैं मगर अगर भगवान की कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ी तो वो देखना ना, 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 ना देखना एक ही बराबर हो जाएगा। नहीं, तो किसको भगवान देखते हैं, किसको अपनी कृपा देते हैं, वो भी कृष्णा दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में बता रहे कि राग द्वेष अविमुक्तस्तु विषयर इंद्रिय चरण आत्मा वशैर विधय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद मतलब कृपा। किस पे कृपा करते हैं? जो व्यक्ति विषय इंद्रिय चरण, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है। सेवा की शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है जीभ से। सेवोन मुखे ही जीव आदौ। नहीं, महाभारत भी किससे शुरू हुई? जीभ से शुरू हुई थी। नहीं, दुर्योधन द्रौपदी ने बोला था ना, उसको कटाक्ष दिया था कि अंधे का बेटा अंधा। इसलिए जीभ बहुत डेंजरस है। जितनी भी युद्ध हुए सब मुंह से ही शुरू हुए। छोटी सी है जीभ मगर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ले आती है। नहीं, इसलिए विदुर नीति में लिखा है कि मूर्ख और पंडित में ही फर्क होता है। मूर्ख जो होता है उसको ये नहीं पता कब क्या बोलना है, मगर पंडित जो होता है वो 3 बार सोच के बोलता है। क्या सोचता है वो? ये सोचता है वो क्या बोलने वाला है, ये सोचता है कि उसके बोलने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सुनने वाले पे, और ये सोचता है कि जो प्रभाव पड़ेगा तो वो जो प्रभाव से जो कार्य करेगा, जो उसका इम्पैक्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, वो क्या होगा। तीनों चीजें सोचेगा वो, मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या सुन रहा है और उससे क्या होगा, तब उसके बाद बोलता है पंडित। सबसे खतरनाक इंद्रिय हमारे शरीर में जीभ है, सबसे प्रॉब्लमैटिक। सो इसीलिए शास्त्रों में लिखा है सेवोन मुखे ही जीवादौ। पहले अपने जीभ से भगवान की सेवा शुरू करो। क्या करो? सेवन मुखे जीवादु, स्वयं भगवान का नाम लेना शुरू करो। सिंपल, पहला नियम से, और दूसरा अपने जीभ से भगवान का प्रसाद टेस्ट करो, भगवान का प्रसाद लो। एक बार जीभ कंट्रोल में आ गई तो सारी इंद्रियां अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जीभ पेट उदर, उदर समझते हैं, पेट और जनेंद्रिय जेनाइटल्स, तीनों एक ही लाइन में है नहीं है। सो वेल हम सोचते हैं एलोपैथी में इसका कोई कंसेप्शन नहीं है, जीभ और पेट में क्या और जेनाइटल्स में क्या कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन नहीं है, मगर आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में पैर का कनेक्शन भी मुंह से है, पता है आपको? अगर आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है, अगर आपके एडी 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 समझते ना, अगर आपके एडी में दर्द हो रहा है इसका मतलब है कि आपको कुछ आयुर्वेद के अनुसार आपको कुछ पेल्विस में प्रॉब्लम है। पेल्विस कैसे कहेंगे, व्हाट टू से, हरे कृष्ण, पेट कह दो, पेट में कुछ प्रॉब्लम है समझो, यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली होती है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें पता लग जाएगा, क्योंकि एडी का कनेक्शन वहां से है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर अगर आपके कुछ तलवे में कुछ दर्द हो रहा है इसका मतलब आपको पेट में प्रॉब्लम है। पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिर्फ शरीर ही, शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, पूरा ब्रह्मांड शरीर से जुड़ा हुआ है, यह भी गीता में कृष्णा बता रहे हैं। इसलिए इसलिए जब हम सोते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम कौन सी दिशा में अपना सर रख के सो रहे हैं, यह भी बात है। कृष्णा गीता में कह रहे हैं युक्त आहार विहारश्च युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो व्यक्ति अपना सर उत्तर दिशा में रख के सोता है वो जरूर बीमार होगा, निश्चित है, क्योंकि हमारा शरीर इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। अब आपको इसके पीछे विज्ञान ये है कि आपको पता होगा कि अर्थ की भी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, होती हैं। अब मैग्नेटिक वेव्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं, वेल हाँ, चुंबकीय किरण, तरंग, तरंग, ठीक है। तो धरती की भी चुंबकीय तरंग होती हैं, तो वो हमारे शरीर पे प्रभाव डालती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझे। सो अगर आप उत्तर की दिशा पे सर रख के सो गए तो हमारे हम बीमार होंगे, ये शास्त्रों में लिखा है, कृष्णा कह रहे हैं गीता में। अगर आप पश्चिम की तरफ सर रख के सो गए तो आयु कम हो जाएगी। आप कहोगे ऐसे कैसे है, ऐसे है क्योंकि हमें लगता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मगर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ, सबका, हर व्यक्ति का हर चीज से एक संबंध है, हमारा जीव का इस ब्रह्मांड से संबंध होता है, जीव का भगवान से संबंध है, हमारा एक दूसरे से संबंध है नहीं, हर चीज का हर चीज पे प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सोते वक्त हम दक्षिण की तरफ सर रखते हैं या पूर्व की तरफ सर रखते हैं, एंड दैट्स गुड। अगर आप पूर्व की तरफ सर रखोगे सोगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, दक्षिण की तरफ सर रख के सोगे तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। तो स्टूडेंट्स दक्षिण की तरफ सर रख के सोए, नहीं जो बच्चे मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, शास्त्रों में है। सो मैं समझा रहा था कि हमारी जीभ, हमारा उदर और हमारी जनेंद्रियां सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर जीभ कंट्रोल में आ जाएगी तो भूख अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, और अगर पेट नियंत्रित हो गया तो सारी इंद्रियां नियंत्रित हैं, क्योंकि सबका कनेक्शन पेट से है। इसलिए आयुर्वेद में लिखा है कि जो भी खाओ बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, बेस्ट है कि प्रसाद खाओ, क्योंकि प्रसाद लेने से, प्रसाद लेने से तीन दोष कफ पित्त और वायु शांत हो जाते हैं, कोई कोई बीमारी नहीं आती प्रसाद लेने से। सो तो मैं बता रहा था कि सेवा जीभ से शुरू करो। अब क्वेश्चन ये है, कोई पूछेगा कि भी 24 घंटे तो भगवान में मन लगता नहीं है मेरा, और लगाना बहुत मुश्किल है 24 घंटे। सो अब क्या करें, जब तक आप जितना भगवान के बारे में सोचोगे उतने ही भगवान आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप 5 मिनट भगवान के बारे में सोचते हो तो भगवान आपके बारे में 5 मिनट सोचेंगे, आप 10 मिनट सोचोगे तो 10 मिनट, 15 मिनट तो 15 मिनट। यही अथा माम प्रबद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम, हम जिस तरह भगवान का भजन करेंगे उसी तरह भगवान भी हम पे कृपा करते हैं। सो इसलिए अब हमें क्या करना है, कृष्णा कह रहे हैं 24 घंटे मेरे बारे में सोचो, मगर वो संभव नहीं है, कैसे करेंगे। भगवान कह रहे हैं मन मुझ में आसक्त करो, आसक्त नहीं हो रहा, मन भाग जाता है इधर उधर। भगवान कह रहे हैं बुद्धि मुझ में लगाओ, बुद्धि में काम क्रोध लोभ मोह ये सारी चीज आ जाती हैं, हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो कृष्णा बता रहे हैं क्या करना है, कृष्णा 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मई स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय। अर्जुन यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ओके, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, अभ्यास योगे न, अभ्यास करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल है। सो क्या अभ्यास करना है, अभ्यास करना है भक्ति का। क्या भक्ति का अभ्यास है, भक्ति का अभ्यास है कि माला पे भगवान का नाम लेना, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप मन मन में नाम लोगे तो उससे काम नहीं चलता, क्योंकि अगर आप मन में नाम लेना चाहते हो तो मन में खाना भी खा लो मगर उसे भूख नहीं मिटती। इसलिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हम माला पे नाम लेते हैं, जैसे मेरे पास माला है, माला पे नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके दो फायदे हैं। एक फायदा यह कि डिसिप्लिन रहता है, काउंटिंग रहती है, नहीं अनुशासन रहता है, वरना आप मन में नाम लोगे तो कभी लोगे कभी नहीं लोगे, कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा, नहीं। हर चीज में कुछ सिंसेरिटी, कुछ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप जॉब पे कभी जाओगे कभी नहीं जाओगे तो आपको जॉब से फायर कर देंगे, निकाल देंगे। उसी प्रकार हम कभी नाम लेंगे कभी नहीं लेंगे, कभी मन से पूजा करेंगे नहीं करेंगे, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं दक्ष मेरा डिवोटी थोड़ा एक्सपर्ट है, तो हम माला पे नाम लेते हैं, एक माला दो माला तीन माला चार माला, जितनी कर सकते हो उतनी करो। चार माला को बोलते हैं एक ग्रंथी, और हम मिनिमम 16 माला करते हैं इस्कॉन में, ये नियम है। बस शुरू आप वैसे कर सकते हो एक माला से, दैट्स अ गुड आइडिया। नियमों में कुछ लोग कहते हैं कि हम भक्ति में कोई नियम पालन नहीं करेंगे, भक्ति स्वतंत्र है, मगर ये कहना बिल्कुल गलत है। कृष्णा गीता में कह रहे हैं देखो अर्जुन, नियम पालन करने से व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जो नियम पालन नहीं करता वो, बल्कि उसका पतन हो जाता है। एक पतंग है, पतंग को आप उड़ाना चाहते हो तो उसको डोरी से बांध के रखना पड़ेगा, नहीं जैसी डोरी कटेगी पतंग नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार अगर हम पतंग, इसी प्रकार अगर हम मन को ऊपर उड़ाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उसको नियमों की डोर से बांधना पड़ता है। जो क्लास में बच्चा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। इसलिए जो भक्ति के नियम पालन नहीं करेगा उसकी चेतना ऊपर नहीं बढ़ सकती। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फ्रीडम, भगवान गीता में कह रहे हैं, सच अ नाइस थिंग। कृष्णा बहुत इंटेलिजेंट है। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फ्रीडम, जितने नियम पालन करोगे उतना ही प्रकृति के नियंत्रण से आप मुक्त हो जाओगे। सो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार हम नियम पालन नहीं करेंगे, हम अपने मन से करेंगे। मन के रथ पे बैठोगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा। इसलिए भक्त इंटेलिजेंट लोग मन के रथ पे नहीं बैठते, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो मन के रथ को छोड़कर भगवान के दिए हुए उपदेशों के अनुसार चलते हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं अभ्यास योगे ना ततो माम इच्छा तुम धनंजय, अगर तुम इस तरह से मेरी सेवा करते रहोगे नियम पालन करके, जैसा मैंने अपने शास्त्र में बताया है, हर चीज का कुछ ना कुछ नियम है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती अर्पण कर रहे हो, तो आप अगरबत्ती सीखनी पड़ेगी आपको कैसे अर्पण करनी होती है। वो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब शास्त्रों में लिखा है, आपको बस पढ़ना है। तो भक्ति शास्त्रों में लिखा है कि या तो अगरबत्ती एक अर्पण करो या तीन, अगर दो करोगे तो वो अपराध है। तब आप क्या करोगे, कहोगे वेल ये क्या चीज है, हमें पता ही नहीं। अगर आप अगरबत्ती अर्पण करोगे भगवान को और फूल अर्पण करोगे, अगर आप फूल अर्पण कर रहे हो अगरबत्ती नहीं कर रहे तो वो भी अपराध है। अगर फूल अर्पण कर रहे हो तो अगरबत्ती करना जरूर है। अब कहोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान ने बोला है, भगवान को ऐसे अच्छा लगता है। नहीं, भगवान एक व्यक्ति है, समझ रहे हो आप, भगवान कोई ज्योति नहीं है, कोई लाइट नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है मगर परम पुरुषोत्तम व्यक्ति है। कृष्णा गीता में खुद कह रहे हैं 9वें अध्याय में 7वें अध्याय में कि अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम। अर्जुन, जो लोग सोचते हैं कि मैं एक ज्योति हूं और एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाता हूं, मन्यते माम अवबुद्धय, वो कम बुद्धिमान है। परम भावम अजानंतो, मैं एक व्यक्ति हूं मगर साधारण व्यक्ति नहीं हूं, ना ही असाधारण व्यक्ति हूं, मैं वो हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो कि तुम्हारे चिंतन से परे, अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद कह रही है। तुम मेरे बारे में सोचना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे। यशोदा माँ ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, देखा नहीं देखा, मिट्टी खाई थी। किसके पेट में पूरा ब्रह्मांड होता है, किसी के नहीं। यशोदा माँ कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी, बंधे नहीं कृष्ण, दो उंगलियां छोटी पड़ रही थी। सो हमारी तरह नहीं है, वो अलग तरह के व्यक्ति हैं, वो परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम है। हमारा शरीर बना है इस हड्डी मांस से, भगवान का शरीर हड्डी मांस से नहीं बना है, भगवान का शरीर सच्चित आनंद विग्रह है। कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं परम भावम अजानंतो मानुषिम तनुमाश्रितम। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सोचता है कि मैं मनुष्य शरीर लेके आता हूं इस संसार में, वो बेवकूफ है। भगवान कोई शरीर नहीं लेते, भगवान उसी रूप में इस संसार में अवतरित होके आ जाते हैं। शरीर तो हमारा है जो खत्म हो जाता है, भगवान का रूप वही का वही है। यहां पे बना भी है रूप, यही रूप है जो आप देख रहे हो, श्याम सुंदर रूप। आप कहोगे रूप कहां से आ गया, शास्त्रों में दिया है। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है ज्योतिर अभ्यंतर श्याम सुंदरम। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है ज्योति के अंदर कौन है, श्याम सुंदर है। उनका रूप क्या है, वेनुम कौरांतम अरविंद दलायाताक्षम। भगवान बांसुरी पकड़ते हैं, आपको गिटार क्यों नहीं पकड़ते, गिटार क्यों नहीं बजाते कृष्ण, वेल भगवान को अच्छा नहीं लगता। आप पूछोगे क्यों नहीं अच्छा लगता, भगवान की मर्जी। भगवान मोर क्यों लगाते हैं सर पे, मोर मुकुट। भगवान हीरे क्यों नहीं पहन लेते, इसका क्या उत्तर है, भगवान को नहीं अच्छा लगता। भगवान को मक्खन क्यों अच्छा लगता है, इसका कोई आंसर कोई उत्तर नहीं है। भगवान को जो अच्छा लगता है लगता है, जो नहीं अच्छा लगता वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है। भगवान को भी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती हैं, जिस तरह हमें भी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें बुरी लगती हैं। इसीलिए कथोपनिषद में लिखा है नित्यो नित्याना नाम चेतनाश्चेतना नाम। वो भगवान एक व्यक्ति है, जिस तरह हम व्यक्ति हैं वो भी व्यक्ति हैं, जिस तरह हम चेतन हैं हम जीवित हैं वो भी, उनमें भी जीवन है, बल्कि वो जीवित हैं तो इसलिए हम जीवित हैं, भगवान के अनुग्रह से हमारा जीवन है, भगवान के अनुग्रह से हमारा व्यक्तित्व है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो ये तो जानना चाहोगे भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ये तो समझना पड़ेगा। अगर हमें यही नहीं पता होगा भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तो सेवा कैसे करेंगे, हम अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे फिर तो। इसलिए कृष्ण यहां पे कह रहे हैं कि अभ्यास योगे ना, मेरे भक्तों के पास जाओ अर्जुन, उनसे पूछो कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, और फिर उसके अनुसार मेरी सेवा करो। तो भगवान का, भगवान को फल कौन सा अच्छा लगता है सबसे, किसी को पता है? कृष्ण भगवान को वेल, जिसने गीता पढ़ी उसको पता है, जिसने शास्त्र पढ़े उसको पता है, कृष्ण भगवान को चीकू बहुत अच्छा लगता है। चीकू पता है ना आप लोगों? चीकू नहीं पता, इसको नहीं पता, शशांक को। यहाँ पे क्या कहते हैं चीकू? चीकू चीकू कहते हैं है? वेल जो भी है, आलू की तरह लगता है मगर होता चीकू। कृष्ण भगवान को चीकू बड़ा अच्छा लगता है, उनका फेवरेट फ्रूट है। तो आपको भगवान को भी कुछ अच्छा लगता है, भगवान को भी कुछ बुरा लगता है, कैसे भगवान है? नहीं, भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। भगवान तो पर ब्रह्म है, मगर वो हमारी गलत धारणा है। तैत्रीय, मैं वेदों की बात कर रहा हूं, अथर्ववेद में लिखा है रसो वई सह, भगवान रस के सागर है। रसम ही एवायम लद्वानंदी भवती, जो भगवान से जुड़ता है, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के इच्छाओं के अनुसार जिस तरह भगवान को अच्छा लगता है, उसको भी वो ही आनंद अनुभव होता है जो भगवान को अनुभव हो रहा है। ये शास्त्रों में लिखा है, वेदों में। सो जो लोग वेद पढ़ते हैं और कहते हैं देखो भगवान शक्ति है, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो गलत है। ये वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, वो बिल्कुल गलत है। सो भगवान की कुछ लाइकिंग्स हैं और डिसलाइकिंग्स हैं, अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही भगवान के भक्त हैं, भगवान अपनी इच्छाएं रखते हैं, भगवान की इच्छाएं हैं। राम भगवान की इच्छाएं थी, कृष्ण की इच्छाएं थी, मगर वो इच्छाएं और हमारी इच्छाएं बिल्कुल अलग हैं। और वो कहां है गीता में? गीता में कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छा क्या है कि तुम लड़ो, इच्छा थी कृष्ण की, मां मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन मैं चाहता हूं कि तुम लड़ो। इसलिए कृष्ण ने बोला ठीक है, कृष्णा, अर्जुन ने बोला कृष्णा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं लड़ रहा हूं। मां मनुस्मर युद्ध च, तो भगवान की इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं भगवान की इच्छाएं नहीं है, भगवान कुछ चाहते हैं हमसे। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है समझना कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये समझना है बस। भगवान की कुछ अपेक्षाएं हमसे, जिस तरह माता पिता हमसे कुछ चाहते नहीं, चाहते नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार भगवान से भी हमें, हमसे कुछ चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान ये चाहते हैं कि देखो ये संसार छोड़ के भगवान के पास दोबारा वापस चले जाओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, ये गीता में लिखा है। कृष्णा कह रहे हैं मेरे धाम में आकर वापस कोई संसार में लौट के नहीं आता, ये भगवान का प्लान है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, मगर अगर हम अपने आइडिया से चलेंगे, अपने विचारों से चलेंगे, तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मगर अगर हम कृष्ण के विचारों से चलेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। तो आप कह सकते हो मैं बहुत सुखी हूं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास एजुकेशन है, हम कह सकते हैं, मगर एक्चुअली कृष्ण क्या कह रहे हैं? सुख क्या होता है? सुख की डेफिनेशन होती है, सुख क्या चीज है? भगवान गीता में बता रहे हैं असली सुख वो है जिसको प्राप्त करने के बाद हम पूर्ण संतुष्ट हो जाते, वो असली सुख है। वो सुख, सुख क्या है जिसको, जिसको प्राप्त करने के बाद अभी भी हम असंतुष्ट है, जिस सुख से संतुष्टि नहीं आ रही वो सुख नहीं है, वो झूठा सुख है। इस संसार के सुख से कभी भी कोई संतुष्ट नहीं होता, हम बोर हो जाते हैं, इस संसार का सुख धीरे धीरे बोरियत में चला जाता है। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि यही समस्मृता सुखा दुख योनिया एवते। कृष्ण संसार, अर्जुन इस संसार के सुख को अगर ध्यान से देखोगे तो सुख के अंदर दुख छुपा हुआ है। आप कुछ भी करो सुख ही सुख पाने के लिए अल्टीमेटली दुख मिलेगा नहीं। अब सोने के लिए बहुत सॉफ्ट बेड लाओ खरीद के, बहुत मखमली गद्दा, तो क्या होगा अंत में? क्या होगा आपको? क्या हो जाएगा? स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस पता है डॉक्टर्स को? पता है नहीं, यहाँ गले में दर्द हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा देखो अब मखमली गद्दा छोड़ के आप जमीन फंसो, जो आप पहले भी कर सकते थे। तो सुख में दुख छुपाए। यहां पे गुड़ खाते हैं सब? खाते होंगे नहीं? तो गुड़ में सुख है नहीं, मीठा, मगर उसके अंदर दुख भी है। पता है क्या है? है डायबिटीज छुपी हुई है उसमें। वो हो जाएगी आपको अगर ज्यादा गुड़ खाओगे तो। तो अगर आप, अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपने एसी लगा लिया, एसी का सुख मिल रहा है, नहीं गर्मी कम हो गई, ठंड है, तो एसी का सुख है ठंडक, मगर उसमें दुख भी है। पता है क्या दुख है उसमें? एसी के ठंडक में एक दुख है बहुत बड़ा। पता है क्या है उसमें? है आर्थराइटिस का दुख छुपा हुआ है। ज्यादा एसी इस्तेमाल करोगे तो उससे आर्थराइटिस, समझते हो, घटिया घटिया हो जाएगा, जॉइंट्स खराब हो जाएंगे और बुद्धि कम हो जाएगी। ये मनुसंहिता में लिखा है कि जो ज्यादा ठंडक में रहते हैं, आर्टिफिशियल ठंडक, गर्मी में आप ठंडा कर रहे हो तो उससे बुद्धि कम हो जाती है, वो दुख है, दुख छुपा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि गर्मी से, हीट से इंटेलिजेंस शार्प होती है, ठंड से बुद्धि कमजोर हो जाती है। अभी ठंड है, आलस्य आएगा ठंड में, कुछ सोचने का मन नहीं करेगा, जब थोड़ी हीट होती है तो माइंड और बॉडी एक्टिव होती है, चुस्त रहती है। सो हर सुख में दुख है। हम सोच रहे थे पहले बचपन में कि शादी करेंगे तो बड़ा मजा आएगा जब जवान हुए, मगर जब शादी कर ली तो पता लगा नहीं, जिसने शादी नहीं की वो भी पछताया, जिसने शादी की वो भी पछताया। उसमें दुख है, दुख छुपा हुआ है, हर चीज में दुख है, प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। इसलिए कृष्णा, कृष्णा की एनालिसिस बेस्ट है, गीता परफेक्ट किताब है, गीता से ऊपर कोई किताब नहीं। अगर आप हर श्लोक गीता का पढ़ोगे बहुत कुछ सीखने को है उसमें। एक पाश्चात्य देश के एक फिलोसोफर थे शोपेनर, तो पाश्चात्य देश के दार्शनिक, तो उन्होंने कहा देखो गीता का सिद्धांत दुनिया का सबसे उच्चतम सिद्धांत है, गीता के 700 श्लोक में वो सिद्धांत है जो हमारे जितने भी पाश्चात्य देश के फिलोसोफर्स हैं वो अभी तक एक श्लोक गीता का दे नहीं पाए, एक लाइन, ये एक पंक्ति है, यही संस्पृजा सुखा दुख योनिया एवते, इस संसार का सुख दुखों की योनि है। मतलब अगर आप सोचेंगे बहुत सुपर लाइन है, इससे अच्छी एनालिसिस नहीं हो सकती, इससे अच्छा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिसको यह समझ आ गया कि हर सुख में दुख है, वो सुख छुएगा नहीं, नहीं वो इस संसार के सुख के पीछे नहीं भागेगा। बाहर से अच्छा लगता है मगर अंदर से प्रॉब्लम है। तो इसलिए भक्त क्या करता है, इस संसार के सुख को छोड़ के भक्ति के सुख के पीछे जाता है, क्योंकि भक्ति के सुख में दुख नहीं है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि जो मेरा भक्ति का सुख है वो सुख है जो हर पद पद पे बढ़ता रहता है। इस संसार का सुख वो सुख है जो हर कदम कदम पे ढलता रहता है। फाइनली बोर हो जाएंगे, अब एक रसगुल्ला खाओगे अच्छा लगेगा, दो खाओगे अच्छा लगेगा, तीन खाओगे अच्छा लगेगा, चार खाओगे बोर हो जाओगे, पांच खाओगे तो उल्टी आ जाएगी, यही होने वाला है। मगर आप भगवान का नाम बोलोगे, हरे कृष्णा एक बार बोलोगे तो अच्छा लगेगा, दो बार बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तीन बार बोलोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और बार बार बोलोगे तो हो सकता है कि आप बेहोश हो जाओ भक्ति के आनंद में, ऐसा भी हो सकता है। वो आनंद रुकता नहीं, वो मल्टीप्लाई होता रहता है। ये फर्क है संसार के आनंद में और भक्ति के आनंद में। मुझसे किसी ने पूछा था, मैं दिल्ली में प्रचार कर रहा था, तो मुझसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि भक्ति में बहुत आनंद है, हम भी तो सुखी, हम भी आनंदित हैं। आप कैसे प्रूफ करोगे कि भक्ति में बहुत आनंद है? हमें तो टीवी देखने में आनंद आता है, हमें तो घूमने में मजा आता है। मगर मैंने उससे बोला, देखो इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भक्ति में आनंद है, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे। आपको जिस चीज में आनंद आता है वो हम नहीं कर रहे। इस संसार में लोगों को आनंद आता है घूमने फिरने में, हम घूमने फिरने नहीं जाते। टीवी देखने में हम टीवी नहीं देखते ज्यादा, हम देखते ही नहीं। अच्छा खाना खाने में हम अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छे कपड़े पहनने में अच्छे कपड़े नहीं पहनते। हम वो सब चीज नहीं कर रहे जो कि संसार के लोग सुख ढूंढने के लिए करते हैं, करते हम वो नहीं कर रहे। मुझे भक्ति करते हुए 18 साल हो गए, 16-17 साल हो गए, और वो मैं सब कुछ कर चुका हूं जो आप अभी करने वाले हो गए शायद। क्योंकि जब मैं अपने घर में था, तो अब जब कॉलेज में था, तो हम लोग अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, सिंगापुर चले गए, इंग्लैंड चले गए। मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मणिपाल कॉलेज पता है? मणिपाल पहले साउथ में था, कर्नाटक में, मेडिकल कॉलेज। तो वहां पे ड्रग्स थी, तो ड्रग्स ली हमने। मैंने ज्यादा नहीं ली थी, थोड़ी सी ली थी, मगर गर्लफ्रेंड्स थी, घूम रहे थे हम बाइक्स पे, पिक्चर देख रहे थे, सब कुछ किया जो आप अभी सोच सकते हो करने की। आप सोच रहे हो हम पैसे कमाएंगे फिर उड़ाएंगे, हम पैसे उड़ा के देख भी चुके, पैसे फूक के देख भी चुके। उस टाइम 18 साल पहले जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी मदर डॉक्टर हैं, तो उस टाइम वो 2 लाख रुपए कमाती थी पर मंथ। आप सोच सकते हो उस टाइम 18 साल पहले 2 लाख कितना होगा, आप इमेजिन कर सकते हो कितना होगा। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास पैसे पानी की तरह थे, पानी की तरह। मैंने साइकिल कभी नहीं चलाई, बचपन से गाड़ी चलाई है, खिलौना था गाड़ी मेरे लिए, मारुति कार चला के उसको तोड़ के फिर नहीं खरीद लेते थे हम, मारुति कार खरीदते थे हम खिलौने नहीं खरीदते थे। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वहां पे कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा, वो सब करके हमने देख लिया है और छोड़ भी दिया वो सब। और छोड़ के 18 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, कोई कर सकता है ऐसे? आप 1 साल कर लोगे झूठ मूठ करके, 2 साल कर लोगे, 17-18 साल आप भक्ति नहीं कर सकते अगर हमें इसमें आनंद नहीं मिल रहा होगा। कोई नहीं कर सकता, या कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमें यहां पे मिल रहा है जो कि वहां नहीं है। रस वर्जन रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, भगवद गीता में कृष्णा कह रहे हैं उच्च रस लेके नीचे का रस छोड़ दो। क्योंकि आप लोगों ने भक्ति का रस नहीं चखा है इसलिए आपको नहीं पता कि वहां पे क्या है, इसलिए हमें संसार में संसार अच्छा लग रहा है। मगर एक बार आपने भगवान के नाम का आनंद ले लिया, भगवद गीता के ज्ञान पढ़ने का आनंद ले लिया, संसार का आनंद फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे पास लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं, यार आप टीवी नहीं देखते, घूमने नहीं जाते, आप जिंदा कैसे हो? मतलब जिंदा हो कैसे? शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं फूंकते, उनको विश्वास ही नहीं होता कि हम जिंदा क्या है। क्योंकि संसारी लोग तो यही करते हैं ना। मैंने कहा देखो मैं प्रमाण हूं तुम्हारे सामने। इसीलिए साधुओं के मुख से कथा सुननी चाहिए, नहीं क्योंकि अगर हम खुद से पढ़ेंगे ना भगवद गीता तो हमें लगेगा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल है। नहीं, कृष्णा जो कह रहे हैं भक्ति में बहुत आनंद है, किसने देखा है? हम कैसे रह सकते हैं केवल नाम लेके भगवान का? संभव नहीं है। इसलिए हम लोग आपके सामने बोलने आए, देखो संभव है, हम कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह ही थे। मगर किसी साधु से मिले, हमने भी ऐसे प्रवचन किसी का सुना, उन्होंने हमें बताया देखो भगवद गीता पढ़ो, जप करना शुरू करो। शुरू में मुश्किल था मगर हमने उनकी बात मान के करना शुरू किया और धीरे धीरे हमारा जीवन बदल गया और हमें भक्ति का आनंद की थोड़ी सी झलक अभी मिल रही है, क्योंकि भक्ति की भक्ति तो असीम है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी भक्ति पता लगे, वो कोई नहीं पता लगा सकता, वो भगवान खुद नहीं पता लगा सकते कि भक्ति कितनी है। भगवान को खुद नहीं पता कि उनमें आनंद कितना है, तो हम क्या पता लगाएंगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि करो, शुरू करो, और जब इस तरह से भक्ति करते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, एक दिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। माम इच्छा तुम धनंजय, आपके हृदय में इच्छा आ जाएगी, कृष्णा आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आपके हृदय में इच्छा आ जाएगी, कृष्णा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, मैं अब यहां केतला में नहीं रहना चाहता, बस। मगर जब तक शरीर है तब तक रहना पड़ेगा, वो बात है, जब तक समाज है तब तक वहां पे रहना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, मगर आपको बोरिंग लगना लगेगा संसार एक दिन। और जिस दिन ऐसा हो गया, समझ लो कि भगवान की कृपा आ गई। यही भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा यही होती है जब आपको संसार बोरिंग लगने लगेगा। आप काम करोगे मगर कर्तव्य से, ठीक है चलो ड्यूटी करनी है, मैं कब बोरिंग है, इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कभी क्रिकेट मैच आते हैं तो क्या होता है, आप स्कूल जाते हो मगर क्या सोच रहे होते हो, जल्दी जाऊंगा घर और क्रिकेट मैच। आप लोग काम करने जाओगे तब भी सोचते हो यार क्रिकेट मैच देखना है। उसी प्रकार आप संसार में काम कर रहे होगे मगर क्या सोच रहे होगे कि कब मैं भगवान के पास वापस जाऊंगा। बिल्कुल फर्क हो गया, वही के वही हो आप इंसान, सब कुछ वही है मगर इच्छा बदल गई। तो मैंने शुरू में कहा था कि भक्ति मतलब इच्छा को बदलना। भगवान की इच्छा है कि आप भगवान के पास चले जाओ, अब आपकी भी इच्छा हो गई कि ओके फाइन मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं वैसे आप भगवान से बात कर सकते हो इसी जीवन में, फेस टू फेस, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो भगवान हमसे खुद मिलने आ जाएंगे, ओके गुड, और फिर हमें खुद ही अपने धाम वापस ले जाएंगे प्लेन में बिठा कर। भगवान का भी प्लेन है, वो उसमें बिठा के हमें वापस ले जाएंगे, सिंपल फिनिश। ह्यूमन मिशन, ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल हो गई। और अगर आप यहां पे रहना चाहोगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ही यहां पे रहना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको यहां से बाहर नहीं निकाल सकती, भगवान भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान आपको अपने पास वापस ले जाएंगे तो दोबारा से यहां पे आ जाओगे, वहां पे रहना ही नहीं चाहोगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अपनी इच्छा बदलो अर्जुन, इच्छाओं का ही खेल है सब, बाकी तो सब सेम ही, समाज सब सेम चल रहा है। आप गलत इच्छा करोगे पाप लग जाएगा, अच्छी इच्छा करोगे तो उससे पुण्य आ जाएगा। एक चक्कू है, एक डाकू के हाथ में चक्कू बहुत डेंजरस है, नहीं उसी चक्कू से वो खून कर सकता है, मगर एक सर्जन के हाथ में वही चक्कू बचाएगा नहीं। वो ही चक्कू है मगर वही नाइफ है, मगर एक तरफ मार रहा है दूसरी तरफ बचा रहा है। उसी प्रकार वो ही हमारा घर है, वो ही मनुष्य जन्म है, वो ही हम है, मगर इसके इस्तेमाल से फर्क पड़ जाएगा। अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे अपने जीवन को तो मोक्ष भगवान के पास, गलत इस्तेमाल करोगे तो नर्क। जैसे करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आप करंट को अगर हीटर में लगाओगे तो क्या करेगा, गर्म करेगा नहीं, एसी में फ्रिज में लगाओगे तो ठंडा करेगा। वही करंट है मगर प्रभाव बिल्कुल उल्टा हो रहा है दोनों का, एक तरफ गर्मी दे रहा है, एक तरफ ठंड, वही करंट। उसी प्रकार वही मनुष्य जीवन है, मगर अगर हम भगवान की वाणी और पालन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की वाणी पालन नहीं करेंगे, अपने मन से चलेंगे तो वी गो टू हेल। तो ये कृष्णा गीता में कह रहे, माम इच्छाप तुम धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, तुम्हारा नाम धनंजय है, तुम धन अर्जित करने में एक्सपर्ट हो। जिस तरह आप लोग अपना धन इकट्ठा कर रहे हो, उसी प्रकार भक्ति को भी अपने जीवन में इकट्ठा करने का प्रयास करो, भगवान के शब्दों को समझने का प्रयास करो। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो भगवान बुद्धि भी देंगे। भगवान बुद्धि देते नहीं, कृष्णा खुद कह रहे हैं कि तेषां सतयोगता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। दसवें अध्याय में जो मेरा कीर्तन करेगा उसको मैं उसके हृदय में विराजमान होकर उसको बुद्धि भी दे दूंगा समझने की। आप ऐसा नहीं कह सकते देखो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये गलत है। आपको नहीं समझ आ रहा, रोज गीता लेके बैठ जाओ, पांच मिनट शकल देख लो गीता की, गीता के अक्षर देखने से ही आपको बुद्धि आ जाएगी। इसमें बहुत शक्ति है इस किताब में, मैंने खुद देखा है। हमारे एक भक्त हैं इस्कॉन में आए थे, अनपढ़, कुछ भी पढ़ना नहीं आता था। श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला पढ़ना शुरू करो, गीता बस देख लो रोज। तो वो रोज खोल के बस देखते थे, उनके लिए तो काला अक्षर बहस बराबर, नहीं अनपढ़ है, देखते रहे, कोशिश करते रहे, लोगों से पूछते रहे। धीरे 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 पता क्या हुआ, इस्कॉन संस्था में वो सबसे बड़े संस्कृत स्कॉलर बन गए और उन्होंने कई किताबें का अनुवाद कर डाला, इतनी बुद्धिमानता आ गई उन्होंने। ये भगवान की कृपा है। सो इसीलिए डू दैट। मगर अब आप कहो ठीक है चलो, हमसे भक्ति के नियम भी पालन नहीं हो रहे, हम गीता भी नहीं पढ़ पा रहे, नाम भी नहीं ले पा रहे माला पे, तो क्या करें। तो कृष्ण कह रहे ठीक है कोई चिंता की बात नहीं है, क्या करो, 12वें अध्याय का 10वां श्लोक, अभ्यासे अपि असमर्थ होसी मत कर्मा परमो भवा। कृष्ण कह रहे ठीक है अगर तुम नहीं कर सकते नियम पालन तो क्या करो, मद अर्थम अपि कर्माणी, मेरे लिए कुछ काम करना शुरू करो। जैसे अभी यहां पे प्रोग्राम करने तो कई लोग सेवा करने, अलग अलग कुकिंग प्रसाद बनाया तो कई लोगों ने हमारी मदद की, तो यहां पे अरेंजमेंट्स हैं, कई लोगों ने हमारी मदद की अरेंजमेंट करने में। सो वो कृष्ण कर्म है, भगवान कह रहे तुम नहीं कर सकते तो यहां से शुरू करो, मेरे लिए कुछ करने की कोशिश करो, चाहे थोड़ा सा ही हो, मेरे लिए फूल माला बना दो, चलो मेरे भक्तों के लिए कुछ कुकिंग कर दो, प्रसाद कर दो, कुछ ना कुछ करो मेरे लिए। अगर तुम ऐसा करोगे कुर्वम सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मुझ में लगने लगेगा। भगवान के लिए काम करना और अपने लिए काम करने में बहुत फर्क है। अगर हम अपने लिए खाना बनाएंगे वो बिल्कुल अलग है, भगवान के लिए खाना बनाएंगे बिल्कुल अलग है, क्योंकि भगवान के लिए खाना बनाने से हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, और अपने लिए खाना बनाएंगे तो भगवान को कुछ लेना देना नहीं हमसे, आप बनाओ और खाओ, भगवान के प्रिय नहीं होंगे। इसलिए कृष्ण कर्म अलग चीज है, बाहर से वही लगेगी मगर बिल्कुल अलग है। यहां पे कितने लोगों ने लेक्चर दिया होगा, नहीं यहां पे भी तो प्रोग्राम हुआ होगा, ये भी प्रोग्राम हो रहा है, मगर बहुत बहुत अंतर है। ये जो प्रोग्राम है वो भगवान की संतुष्टि के लिए हो रहा है, मगर जो बाकी प्रोग्राम होते हैं वो अपनी संतुष्टि के लिए। रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल अलग है, यहां पे रेफरेंस पॉइंट कृष्णा है, बाकी प्रोग्राम में रेफरेंस पॉइंट हम है। रेफरेंस पॉइंट समझते हो, केंद्र, केंद्र बिंदु। सो कृष्णा कह रहे हैं मेरे लिए काम करना शुरू करो, इतना कर लो और क्या, इतना यहां से शुरू कर सकते हैं नहीं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भगवान को सुबह उठ के नमस्कार तो कर ही सकते हो। सुबह उठ के पहले उठते ही चाय मत पियो, अखबार मत पढ़ो, उससे जीवन शुरू नहीं होता, जिस चीज से जीवन शुरू करोगे उसी चीज से जीवन अंत भी हो जाएगा, यह सिद्धांत है। जिस चीज से जियोगे उसी चीज से मरोगे। जो तलवार से जीता है वो तलवार से ही मरता है, जो धर्म से जीता है वो धर्म से ही रक्षित होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो सुबह उठ के फालतू की चीज पढ़ेगा वो पूरे दिन वही सोचता रहेगा, उसका जीवन वैसे ही निकलेगा। तो आग खुलते क्या करना है, सबसे पहले अपने बेड के सामने भगवान की फोटो लगा के रखो। आंख खुलते ही पहले सबसे पहले किसके दर्शन होने चाहिए, भगवान के। भगवान सिर्फ मंदिर में मत रखो कि सबसे पहले उठते ही हम टीवी देखेंगे, वो गलत है। हम भगवान को देखना चाहते हैं, नहीं वरना इस आंख की सार्थकता क्या है। सो अपने बेड के वहां वॉल पे भगवान की फोटो रखो। ओके गुड, आंख खुलेगी भगवान दिखाई देंगे। और गीता को अपने बेड के साथ रखो। गीता लो सुबह उठते ही और गीता पढ़ना शुरू करो, दैट्स अ गुड थिंग। नहीं श्रीमती राधा रानी जो है वो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी एक साल तक, जब वो वृषभानु जी के यहाँ पुत्री जो जन्म लिया उन्होंने, जन्म नहीं प्रकट हुई, तो उन्होंने आंखें नहीं खोली तो लोगों ने सोचा कि वो अंधी है। मगर जब कृष्णा आए वहां पर, वो भी बच्चे थे, जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने वो राधा रानी पालकी में लेटी हुई थी, तो कृष्ण ने जब झांक के देखा तो राधा रानी ने फिर आंख खोल ली। सबसे पहले किसके दर्शन होने चाहिए, भगवान के। नहीं वहां से जीवन कृष्ण से ही शुरुआत है, भगवान से ही शुरुआत है। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको। हाँ चित्र, अच्छा हाँ कुछ लोग कहते हैं यू आर राइट कि पैर की तरफ भगवान का चित्र हो जाएगा। या यू कैन से दैट्स ओके। वेल कुछ लोग कहते हैं पैर की तरफ हो जाएगा, बट दूसरी बात यह है कि पैर की तरफ चित्र रखना ज्यादा अच्छा है, इससे अच्छा कि भगवान के बारे में स्मरण ही ना करना, समझे। कुछ लोग कहते हैं देखो गीता जो है उसकी पूजा करनी चाहिए, कहते हैं, इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह कपड़े में बांध के मंदिर में रखो, पूजा करो, और इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं। सो ग्रंथ नहीं, ग्रंथ है तो ये अच्छा, पूजा करनी अच्छी है, पढ़ना अच्छा है, पढ़ना है। पूजा छोड़ो यार, बेकार की पूजा है वो, अगर पढ़ नहीं सकते तो पूजा करो और पढ़ो तो वो तो बेस्ट है। तो इसलिए हम लोग गीता, इसलिए चित्र वहां लगाते हैं। चित्र नहीं लगाओगे तो फालतू की चीज स्मरण आएगी, उससे अच्छा तो यह है कि भगवान का स्मरण आ जाए, उससे अच्छा ही है। मगर अगर आप बिना चित्र लगाए आंख खुलते ही स्मरण कर सकते हो वो तो बेस्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो बेस्ट है। मगर अब क्या करें, वो क्या कहते हैं मरता क्या ना, वो बस वही बात है, कुछ तो करना पड़ेगा, किसी तरह तो भगवान को डालना पड़ेगा दिमाग में। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा कर सकते हो, कोई खराबी नहीं है। अब चलो वो नहीं कर सकते तो पंखे में लगा लो वो अच्छा है, नहीं ऊपर। और पहले जमाने में जो राजा महाराजों के महल ऐसे ही बनते थे, आपने देखा है महलों में जाकर ऊपर चित्र होते थे भगवान के। कहीं आप जाओ महलों में, कहीं मंदिर में जाओगे तो ऊपर वॉल्स में बने होंगे भगवान की लीलाएं, दीवारों पे बनती थी। सो सोते थे ऐसे करके आंख खोलते थे तो ऊपर भगवान के दर्शन करते थे। ऐसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या डू समथिंग। कलयुग है, यहां पे नियम पालन करना बहुत मुश्किल है, बहुत लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। नहीं हम जो करना चाहते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं होता वो हो जाता है। तो इस कलयुग में भगवान कह रहे हैं किसी भी तरह मेरा स्मरण करो, अब नियमों के चक्कर में मत पड़ो। सबसे बड़ा नियम है सदैव मुझे याद करो, कभी मुझे भूलो मत। सबसे बड़ा नियम, ये मैं नहीं कह रहा, पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में नियमों की लिस्ट है, और फिर सबसे टॉपमोस्ट नियम लिख रहे हैं कि सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृते हो न जातु चित सर्वे विधि निषेधस्यु एतेर एव किंकर। पद्म पुराण में शिव जी कह रहे पार्वती से कि पार्वती भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अनेक नियम है, मगर सबसे बड़ा नियम है सदैव भगवान को स्मरण रखो और कभी उनको भूलो मत। ये एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। ये आप कहोगे एक ही तो चीज है, सदैव भगवान को याद रखो कभी भूलो मत, अलग अलग है। सदैव ऐसे काम करो कि भगवान याद रहे, ऐसा काम कुछ मत करो कि जिससे भगवान को भूल जाओ। दो अलग चीज हो गई, यम और नियम, क्योंकि सारे नियम इसके किंकर है। किंकर मतलब सर्वेंट है, टॉप मोस्ट नियम है। इसलिए वैसे तो गीता को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भगवान का ग्रंथ है, मगर अब क्या करें, कलयुग में क्या कर सकते हैं, कुछ समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो इसलिए हम लोग गीता को अपने बैग में रख लेते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, कहीं भी ले जाते हैं हम गीता। अब हमारे बैग में गीता होती है और हम ट्रेन में होते हैं, हमारी जब थैली भी है तो हम ट्रेन में होते हैं तो क्या करें। अब अगर हम कभी कभी बाथरूम भी जाते हैं ट्रेन में, नहीं अगर एक बीट बैग और एक गीता छोड़ के चले जाएंगे ना तो पीछे से चोरी हो जाएगी। हो चुकी है एक बार हमारी चोरी, तो नियम पालन करें या चोरी करा दें। अब कलयुग में सब चोर बैठे तो क्या करें, सत्ययुग में ऐसा नहीं होता, तो वहां पे नियम पालन कर सकते हो। सबसे बड़ा नियम है विवेक होना चाहिए, जिसके पास विवेक नहीं है उसके लिए नियम पालन करेगा तो नियम पालन करने से अधर्म उत्पन्न हो जाएगा। नहीं ऐसा ही है, मूर्ख के लिए नियम भी काम नहीं करते। नियम बनाए गए हैं आपको भगवान का स्मरण दिलाने के लिए, नियम इसलिए नहीं बनाए गए कि हम भगवान को भूल जाए। तो अगर नियम पालन करने से भगवान का स्मरण हो रहा तो करो, नियम पालन नहीं करने से अगर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा तो नियम पालन करो, मगर नियम पालन करने से अगर भगवान को भूल रहे हो तो उस नियम का फायदा ही क्या। अगर नियम पालन करने से मेरी जब थैली खो गई बेकार है। तो नियम यह है कि चरणों में भगवान का चित्र नहीं होना चाहिए, मगर अगर बिना चित्र लगाए भूल ही गए भगवान को तो उसका कोई फायदा ज्यादा नजर नहीं आ रहा। नहीं तो लगा लो, भगवान खुशी होंगे, चलो ठीक है मुझे याद तो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई घाटा नहीं है। अब वो नहीं करना तो ऊपर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर लगा सकते हो, मगर आजकल घर भी ऐसे नहीं है कि ऊपर आप चित्र लगा लो। कोई आपके बेडरूम में आएगा देखेगा, ओ यार ये पागल हो चुका है, ऊपर टंगी हुई है फोटो, वो भी थोड़ा ऑड लगेगा, प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है। सो क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, कलयुग में कुछ नहीं कर सकते, कलयुग में थोड़ा विवेक होना चाहिए। कलयुग में अगर आपके घर में बाथरूम है तो पूरा घर बाथरूम है, ये शास्त्रों में लिखा है। अगर अटैच्ड बाथरूम है किसी घर में तो पूरा घर टॉयलेट है वो। सो क्या करोगे, पहले जमाने में टॉयलेट अटैच नहीं होता था घर से, पहले जमाने में जंगल में जाके नहीं, घर में टॉयलेट हो ही नहीं सकता था पहले। पहले जमाने में घर होता था, दूर शौच करके आते थे, घर में प्रवेश करने से पहले कुआं होता था, कुएं में नहा के फिर प्रवेश करते थे घर में, पहले स्वच्छता स्वच्छ शौचम पालन करते थे। अब घर में टॉयलेट अटैच्ड है, बाथरूम अटैच है, लोगों को अच्छा लगता है, मगर एक्चुअली शास्त्रों के बिल्कुल विरोध है। तो जिस घर में टॉयलेट अटैच्ड है वो पूरा ही घर टॉयलेट है, उसमें मंदिर नहीं बना सकते आप। आज भी दक्षिण भारत में जाएंगे तो मंदिर जो है वो घर में नहीं होता अटैच, घर होते हैं और उसके बीच में अलग से मंदिर। कोई गया है पे साउथ इंडिया तो वहां पे कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का एक कॉमन मंदिर होता है, घर घर में मंदिर नहीं होता वहां पर। सो वो पूरी कम्युनिटी, वो पूरे जो गली वाले हैं वो अपने मंदिर जाते हैं, हर गली का अपना अपना मंदिर होता है वहां, छोटे छोटे होते हैं, साउथ में ऐसे होता है, ये पूरी कम्युनिटी का। सो कैसे, नियम ये है कि पूरा आपका पूरा घर अशुद्ध है, आप मंदिर नहीं बना सकते, तो क्या मंदिर नहीं बनाए। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल कलयुग में एक फ्लैट खरीदना इतना मुश्किल है, नहीं, और वो भी अगर आप कहोगे कि बाथरूम अलग से हो दूसरे फ्लैट में, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, बल्कि लोग अटैच्ड बाथरूम के ज्यादा पैसे देते हैं। सो इसलिए वो नियम छोड़ दो, जिस नियम से भगवान की भक्ति नहीं हो रही वो नियम छोड़ दो। ये भी एक नियम है शास्त्रों में, ये भी नियम है, नियम आग्रह, नियम आग्रह। जिस धर्म को पालन करने से धर्म के पथ पे चलने में मुश्किल हो रही है, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। सो इसलिए मंदिर बना लो और नियम छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कहते हैं विवेक, ये विवेक है थोड़ा सा। तो ये चीज हमें, ये सारे चीजें धर्म शास्त्रों में है, ये अपने मन से नहीं बना रहा मैं। मनु संहिता में, मनु जो है गीता में, कृष्ण बता रहे हैं इसके बारे में, गीता में इसकी चर्चा कर रहे हैं, गीता के 12वें अध्याय के यहां पर 12वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं सब, कि किस प्रकार हम नियमों को पालन कर सकते हैं, किस प्रकार नहीं कर सकते, धर्म क्या है। एक उच्च धर्म के लिए हम नीचा धर्म छोड़ सकते हैं, नहीं? जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर आया और उसने कहा, देखो मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, वो खून करना चाहते हैं मेरा, मुझे बचा लो, तो आपने उसको अपने घर में छुपने की जगह दे दी। अब वो जो व्यक्ति है जिसने छुपने की जगह दी, वो सत्यवादी है, वो धर्म का पालन करता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलना अच्छा है। तो वो गुंडे उसके घर आए, उन्होंने पूछा कि भी वो जो आदमी है जिसके पीछे हम पड़े थे, वो तुम्हारे घर में छुपा है नहीं छुपा है, उसको क्या बोलना चाहिए, वो सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पे सच बोलना धर्म नहीं है, यहां पे झूठ बोलना धर्म है, क्योंकि किसी के जीवन बचाना वो ज्यादा ऊंचा धर्म है सच बोलने से, समझे? तो इसीलिए धर्म में हर नियम पालन नहीं होता, हमें देखना पड़ेगा कौन सा धर्म कब पालन होगा। स्थिति, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज आपने सुना होगा, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण ने बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, युधिष्ठिर बोल दो। तो युधिष्ठिर महाराज ने, अश्वत्थामा कौन था, द्रोणाचार्य का पुत्र, तो द्रोणाचार्य ने शपथ ली थी कि अगर अश्वत्थामा मर जाएगा तो मैं भी अपने अस्त्र छोड़ दूंगा। और द्रोणाचार्य इस तरह लड़ रहे थे जिस तरह काल लड़ रहा हो, द्रोणाचार्य को हराना असंभव हो गया था युद्ध में। तो भगवान ने कहा, देखो एक ही चीज करनी पड़ेगी, या तो अश्वत्थामा को मार दो तब द्रोणाचार्य रुक जाएंगे लड़ना, या ये बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया। तो अश्वत्थामा को मारना असंभव था उस दिन, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत बड़ा था, तो अश्वत्थामा कहीं था, ये लोग कहीं थे, जब तक अश्वत्थामा के पास पहुंचे तब तक तो द्रोणाचार्य सारे पांडवों को खत्म कर देते। तो भगवान ने कहा, देखो एक ही रास्ता है, हमें बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मर गया। अब कौन बोलेगा? तो वो बोलेगा जो परम सत्यवादी है। वो कौन है? वो युधिष्ठिर महाराज। भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान वो कराएंगे आपसे जो आप नहीं करना चाहोगे, वो कृष्ण है नहीं, आपका टेस्ट लेने के लिए कि आप अपने व्रत से आसक्त हो या भगवान के आदेशों का पालन करना चाहते हो, भगवान टेस्ट कर लेंगे। तो भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुम बोलो, तुम सत्य बोलते हो ना, द्रोणाचार्य तुम्हारी बात मान लेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य को तुम पे संशय नहीं होगा, तो हमने हमेशा सत्य बोला है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान मैं तो सत्य बोलता हूं, मैं कैसे झूठ बोल दूं? भगवान ने कहा, देखो सोच लो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर बोला, अश्वत्थामा मर गया, भगवान ने शंख बजा दिया, और युधिष्ठिर महाराज ने धीरे से बोला कि वो हाथी था। द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया, द्रोणाचार्य दुखी होकर अपने शस्त्र रख दिए, और उन्होंने द्रोणाचार्य का दृष्टिम था, कौन था, उसने द्रोणाचार्य का गला काट दिया। तो युधिष्ठिर महाराज को इसके लिए एक दिन नर्क जाना पड़ा, पता है क्यों? लोग बोलते हैं उन्होंने झूठ बोला था इसलिए, मगर इसलिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नर्क नहीं गए वो। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ही आपको झूठ बोलने को बोलेंगे तो झूठ बोलना झूठ है या सत्य है? वो सत्य है। युधिष्ठिर महाराज को एक दिन नर्क इसलिए जाना पड़ा क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने अपने सत्यवादी होने के चक्कर में भगवान की बात को एक बार नहीं माना, इसलिए एक दिन नर्क जाना पड़ा। इसीलिए, क्योंकि उनको वो अपनी लीला में दिखा रहे थे, देखो एक नीचे के धर्म के लिए उच्च धर्म छोड़ दिया जाना, उच्च धर्म के लिए नीचे का धर्म छोड़ दो, भगवान की बात मानना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने तो सच झूठ बनाया है, भगवान झूठ को भी सच कर सकते हैं, सच को भी झूठ कर सकते हैं। जब भगवान कह रहे हैं तो सत्यवादी कुछ नहीं होता। सो ये भगवान यहां पर हमें दिखा रहे हैं कि जहां नियमों की बात जो आ रही है वो बात है। सो कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, वेल कुछ शुरू करो, कहीं से प्लीज शुरू करो, कुछ ना कुछ करना शुरू करो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है। अगर हम भक्तों के संग करेंगे, हम पढ़े गीता पढ़ोगे तो ये सारी चीजें गीता में दी हैं, ये मैं नहीं बता रहा, आप ये गीता पढ़ोगे, इस्कॉन की ये नहीं है तो ले लो आज, क्योंकि जो आप गीता प्रेस की गीता खरीदोगे उसमें ये सब नहीं होगा, उसमें व्याख्या नहीं है, उसमें भगवान ने एक श्लोक बोला है, एक श्लोक को समझोगे कैसे आप भगवान के? शास्त्रों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि त्रय अर्था वेदा, वेदों के तीन अर्थ है, वेद के हर श्लोक के तीन अर्थ है, दशा अर्था महाभारत, महाभारत के दस अर्थ है हर श्लोक के, और गीता किसमें आती है? महाभारत में आती है। गीता के हर श्लोक के दस दस अर्थ हैं। अब वो कैसे पता लगेगा? जैसे आज हम बात कर रहे थे पत्रम पुष्पम फलम तोयम पे, तो उस श्लोक के दो अर्थ बताए मैंने, मगर उसके आठ अर्थ और थे। अब वो आपको इतना सब कुछ कैसे पता लगेगा? अगर आप इधर उधर की गीता पढ़ोगे, छोटी गीता और गीता प्रेस की, उसमें कोई व्याख्या नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। आप एक श्लोक का एक अर्थ समझोगे, और कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक चीज का एक ही अर्थ समझते हो ना, तो उससे पता है क्या होता है, उससे एक इंग्लिश में वर्ड होता है फैनेटिक। फैनेटिक समझते हो? फैनेटिक कैसे कहेंगे? लकीर के फकीर बन जाते हैं। इसीलिए हर चीज को, हर श्लोक को गीता के हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तब वो श्लोक समझ आते हैं, हर एंगल से देखा जाता है। एक से चलेंगे तो हम कट्टरवादी बन जाएंगे, नहीं कृष्णा यहां पे कह रहे हैं तो ऐसा ही है, जो नहीं मान रहा उसको मार दो, कट्टरवाद वहीं से होता है। बस एक चीज पकड़ के बैठ गए। इसलिए हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के कई मतलब हैं एक ही श्लोक के, और वो एक गुरु एक साधु के साथ बैठ के समझ आते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि बृहत हो जाती है। तत्तु समन्वयवात, ये वेदांत सूत्र में लिखा है, समन्वय होता है हर चीज का। स्टडी में भी ऐसी होता है, नहीं हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको हम अलग अलग एंगल से समझते हैं, नहीं कभी कोई बुक पढ़ते हैं उसमें अलग तरीके से समझाया जाता है, किसी बुक में अलग तरीके से, किसी बुक में अलग तरीके से, तब जाके वो सब्जेक्ट में ग्रिप आती है, ऐसे ग्रिप नहीं आती। जो लोग कुंजी पढ़ते हैं वो पास तो हो जाते हैं मगर उनको कुछ समझ नहीं आता सब्जेक्ट, वो रटके हो जाते हैं। तो गीता रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, वो समझेंगे तब जब हम प्रॉपर उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बता रहा था इस्कॉन की गीता ले लो आप, जो मैं समझा रहा हूँ वो इसके व्याख्या में लिखा है, तात्पर्य में। अब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको सिर्फ समझ ही नहीं आएगा, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी कि या दिस इज गुड नॉलेज, अच्छा ज्ञान है ये, नहीं वरना आप गीता पढ़ोगे आप बहुत भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि भगवान कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, भगवान की बातों में विरोध हो जाएगा गीता पढ़ने से ही। फिर आप कहोगे यार गीता पढ़ रहे हैं हम, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं, भगवान एक जगह कह रहे हैं चौथे अध्याय में कि भक्त्या मैम अभिचारानी भक्ति योगे न सेवते सगुण्यान समतित्यान ब्रह्म भूयाया कल्पते। कृष्णा कह रहे हैं मेरी भक्ति करने से माया को पार कर जाओगे, चौथे अध्याय में। अठारहवें अध्याय में कृष्णा कह रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। अर्जुन मेरी माया को पार करके मेरी भक्ति प्राप्त करोगे, विरोध हो गया नहीं हो गया? एक तरफ भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति से माया पार करोगे, एक तरफ कह रहे हैं जब तक मेरी माया को पार नहीं करोगे मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। कहोगे लो ऐसे बहुत सारे श्लोक विरोध में है, मगर विरोध नहीं है वो। वो अगर हम किसी भक्त के साथ रहकर पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा कि विरोध नहीं है। मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, प्लस वन आपको पढ़ाया, वन टू थ्री पढ़ाए, माइनस वन पढ़ाया, पढ़ाया माइनस वन, कौन सी पढ़ाया आपको, कौन सी क्लास में मुझे नहीं पता। माइनस वन भी होता है, अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को कहो ना माइनस वन, कहेगा ये टीचर पागल हो गया। माइनस वन क्या होता है, टीचर को ही नहीं आता कुछ, मगर माइनस वन होता है। और माइनस वन का अंडर रूट भी होता है, वो भी होता है आयोटा। सो साधारण सब्जेक्ट में भी विरोध है, प्लस वन माइनस वन, मगर जिसको ज्ञान है उसको पता लगेगा कि विरोध नहीं है। जो मूर्ख है वो लड़ेगा। उसी प्रकार गीता के अलग अलग श्लोक अगर आप किसी साधु के साथ बैठ के नहीं पढ़ोगे या एक व्याख्या के साथ नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, पूरा विरोध हो जाएगा। इसीलिए इसको अच्छी तरह समझना होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस गीता में व्याख्या दी है, वो पढ़ोगे तो समझ आएंगी चीजें और फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, मैं आपको गीता नहीं पढ़वा सकता, मैं आपको खाना नहीं खिला सकता, मैं आपको उत्साह दे सकता हूं कि ये पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी तो अपनी भक्ति चल रही है, मगर आप लोगों की हानि होगी, आप लोग कभी भी खुश नहीं रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा, कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि संसार का नाम दुखाल्यम है, ये संसार दुखों का सागर है, यहाँ पे कोई खुश नहीं हो सकता जब तक हम भगवान की शरण नहीं लें। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अपने दिन में 20 मिनट 15 मिनट दे दो बस भगवान को, यहां से शुरू करो। सुबह उठ के एक श्लोक पढ़ो गीता का, नहाने वाने की कोई जरूरत नहीं, नहाओ मत बस आप पहले तो, एटलीस्ट सर्दियों में, सर्दियों में नहाने की सोचोगे फिर गीता पढ़ोगे, सीधा 8 बजे उठोगे फिर नहाओगे ऑफिस भाग जाओगे, गीता रह जाएगी। तो मैंने बताया ना, नियम पालन, नियम छोड़ सकते हैं अगर गीता नहीं पढ़ पा रहे। सो नहाओ मत, सुबह उठो, बेड पे उठते ही गीता साइड में रखो, आंख मलो, गीता लो और एक श्लोक पढ़ लो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गीता में कोई नियम नहीं है, वैसे भी गीता पढ़ने में कोई नियम नहीं है। तो पढ़ लो, तात्पर्य पढ़ो, थोड़ी देर स्मरण करो उसका, सोचो, और फिर उसके बाद ये जो माला है, ये माला मिल रही है, हम यहाँ पे हम लेके आए हैं, इस पे एक माला भगवान का नाम जप कर लो, रजाई में बैठे बैठे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ठंड लगती है तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो सुनो। तो भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होगा, धीरे धीरे अपने आप शुद्ध हो जाएगा, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है, आंख गर्मी देगी चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है। और जब मन शुद्ध होगा तो शुद्ध मन में भगवान का ज्ञान जाएगा, क्योंकि अगर मन सूक्ष्म सटल नहीं होगा, सटल माइंड कैसे कहेंगे, सूक्ष्म नहीं होगा मन, अगर ग्रॉस चीजों में पड़ा रहेगा, अगर स्थूल चीजों में पड़ा रहेगा, मन परेशान रहेगा तो भगवान की बात नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले मन को शांत करना पड़ता है, वो भगवान का नाम लेने शांत हो जाएगा, फिर पढ़ोगे समझ आने लगेगी। जैसे ऐसे चीजें समझ आएंगी ऐसे ऐसे हमारा बंधन टूटता रहेगा इस संसार से, ऐसे ऐसे हम मुक्त होते रहेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है किसी के पास, कोई आंसर है? वो माइक नहीं है क्या यहाँ पर? सगुण उपासक मोक्ष समझ में? अच्छा, ओके, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। वो मोक्ष की कई परिभाषाएं, संस्कृत में आत्मा शब्द के 6 मतलब हैं। संस्कृत आती है आपके किसी को? संस्कृत जिसको आती है, संस्कृत की डिक्शनरी होती है एक, उसको बोलते हैं निरुक्त। दो तरह की संस्कृत होती है, एक लौकिक संस्कृत एक वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत होती है पाणिनी, सुना है पाणिनी प्रणाम, पाणिनी अध्याय उस पर कमेंट्री लिखी है कात्यायन पतंजलि, इन्होंने कमेंट्री लिखी है। एक वैदिक संस्कृत है। कोई भी किताब पढ़ने के लिए, मान लीजिए आप साइंस की किताब पढ़ रहे हो, उस साइंस की किताब में एक शब्द आया एटम, हिंदी में चलो बात करते हैं, आप विज्ञान की किताब पढ़ रहे हो और उस विज्ञान की किताब में एक शब्द आया तरंग, तो शब्द का मतलब आपको, शब्द का मतलब नहीं पता, तो शब्द का मतलब कहां कहां देखोगे? डिक्शनरी। कौन सी डिक्शनरी? साइंस की डिक्शनरी, नहीं इंग्लिश की डिक्शनरी थोड़ा ना मिलेगा, साइंस की डिक्शनरी में ही वो शब्द का मतलब मिल जाएगा। अगर आप शब्द का मतलब नहीं देखोगे तो अपने मन से कुछ ना कुछ मतलब निकालते रहोगे। उसी प्रकार शास्त्रों में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसकी डिक्शनरी है, वरना अपने मन से मतलब निकालेंगे। जैसे भगवान को शास्त्रों में अरूपम बोला है, निराकार बोला है, ये भी शब्द आता है, मगर उसका मतलब क्या है वो हमें डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे देखो शास्त्रों में दिया है अव्यक्तम अरूपम निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, रॉन्ग। शास्त्रों में लिखा है, डिक्शनरी में लिखा है कि निराकार का मतलब क्या है। शास्त्रों में भगवान को निराकार क्यों कह रहे हैं? डिक्शनरी में लिखा है, निरुक्त में सनत कुमार संहिता में लिखा है कि चर्म चक्षुषा न दृश्यते, जो इन इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए भगवान को निराकार बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, मगर आध्यात्मिक आकार है। समझ गए? इसलिए ऐसे आत्मा शब्द के 6 मतलब हैं, 7 मतलब हैं। आत्मा मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब शरीर भी कहते हैं, आत्मा का मतलब मन भी कहते हैं, आत्मा का मतलब बल आत्मबल, आत्मा मतलब पुत्र को भी कहते हैं आत्मजा, अपने पुत्र को भी कहते हैं, नहीं ये मेरी हमारी प्रेमी को भी आत्मा कहते हैं, ये मेरी आत्मा है, 7 मतलब हो गए। उसी प्रकार मोक्ष के 4 मतलब होते हैं शास्त्रों में, तो कई बार दिया भी ऐसे शास्त्रों में। आप भी सही कह रहे हो कि भक्त को मोक्ष नहीं चाहिए, मगर कई बार शास्त्रों में ये लिख रखा है, भागवतों में लिखा है कि भक्त मोक्ष चाहता है। अब ये विरोध हो गया ना, मैं विरोध की बात कर रहा था, कई बार लिखा है मोक्ष चाहता है, कई बार लिखा था मोक्ष नहीं चाहता, कैसे समझे? मोक्ष के अलग अलग मतलब है। एक मोक्ष का मतलब है सारे दुखों से मुक्ति, वो भी मोक्ष हो गया। दूसरे मोक्ष का मतलब है कि पापों से मुक्ति, वो भी मोक्ष हो गया। तीसरे मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु से मुक्ति, वो भी मोक्ष हो गया। चौथा मतलब है कि भगवान के धाम की प्राप्ति, उसको भी मोक्ष कहते हैं, अल्टीमेट मोक्ष, उसको भी मोक्ष कहते हैं, उसको भी मुक्ति कहते हैं। सो इसलिए भक्त भी मुक्ति चाहता है, मगर वो अलग तरह की मुक्ति है, ये वाली मुक्ति नहीं है जो ज्ञानियों की मुक्ति है, पापों से प्रॉब्लम से नहीं। हम भगवान के चरण प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का नाम है मुकुंद, जो अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। सो मतलब क्या है वहां पे वो समझना पड़ेगा, तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। कृष्णा गीता में कह रहे हैं जरा मराना मोक्ष आया ममा आश्रित अतंतीय, जो जन्म मृत्यु से मोक्ष चाहते हैं वो मेरा आश्रय लेते हैं। फिर कैसे समझेंगे गीता को? तो वहां पे मोक्ष का मतलब हमें वो लगाना पड़ेगा कि जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, मोक्ष मतलब प्रेम, असली मुक्ति तो प्रेम ही हुई ना। अगर मैं आपको इस रूम से मुक्त कर दूं तो आपको शांति मिलेगी? नहीं, जब मैं पूरा सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तब मुक्ति मिल गई। तो उसी प्रकार जो पूरा संतुष्ट कब होंगे? जब प्रेम मिलेगा भगवान में, इसलिए प्रेम ही असली मुक्ति है। दैट्स इट। ओके, कोई और क्वेश्चन है? अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सुनने के लिए और केरला में हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू फॉर सो यहाँ के जो सुपरवाइजर है आपको भी थैंक यू, हेल्प किया आपने। अरेंजमेंट करने के लिए, और जिसने भी हेल्प किया है उनको भी हम थैंक्स करते हैं। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे बुक्स ले लीजिए और रखिए अपने पास, थोड़ी एक्स्ट्रा खरीद लीजिए। मैं सुबह बता रहा था किसी को गिफ्ट करना है तो गीता गिफ्ट करिए, किसी का जन्मदिन हो, शादी हो, पार्टी हो, गीता दो उनको, ये गिफ्ट है। क्योंकि मैं सुबह बता रहा था गीता टाइम बम है, कभी ना कभी फटेगा। अगर वो घर वाले नहीं पढ़ेंगे उसका बेटा पढ़ लेगा, वो नहीं पढ़ेगा उसका पोता पढ़ लेगा, कोई ना कोई भक्त बन जाएगा। मैंने देखा है, हम तो गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मैंने देखा है कि ऐसे उसका पोता भक्त बन गया, उसके पापा ने उसके दादा ने खरीद दिया तो उसका फायदा हो गया। नहीं बाकी काजू किशमिश ये फालतू की चीजें गिफ्ट करने में क्या। अभी न्यू ईयर आ रहा है तो आप एक गीता ले लो और न्यू ईयर में ये गिफ्ट करो अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने सबसे अच्छे दोस्त को। क्या दे सकते हो, बेस्ट चीज दे सकते हो, नहीं गीता, कि उसका भी फायदा हो। सो या यू कैन टेक दिस गीता, और भी किताबें ले लो। इस गीता के दो बुक्स फ्री हैं, वो मैं कल बता रहा था, और ये माला झोली है ये भी ले सकते हैं। यू चैंट, कुछ जप करना शुरू करो तो फायदा होगा, और धीरे धीरे फिर भगवान खुद आपको गाइडेंस देंगे, हार्ट से खुद आपको दिशा दिखाएंगे आगे कैसे चलना है। हो सकेगा तो हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।